लेव्यवस्था अध्याय एक। लेव्यवस्था में हम विभिन्न बलिदानों और उनकी विधियों के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर के सन्मुख चढ़ाए जाते थे। ये विधियां आज हमारे लिए अनजान है क्योंकि ये पुरानी वाचा की व्यवस्था थी जो अब हटा दी गई है। परमेश्वर ने हमारे साथ उससे भी उत्तम वाचा बांधी है। पुरानी वाचा में पशुओं का बलिदान था, परंतु वो सिद्धि प्रदान नहीं करता था। एकमात्र कार्य जो पुरानी वाचा कर सकती थी वो ये था कि वो उस बलिदान की ओर संकेत करें जो हमें परमेश्वर के सन्मुख परिपूर्ण सिद्धता में ले आए। पौलुस इफिसियों को कहता है, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इफिसियों 5:2। मसीह हमारे पापों का ही बलिदान नहीं था, वरन वो परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध का बलिदान भी था। जो बलिदान परमेश्वर को चढ़ाए जाते थे वे सुखदायक सुगंध के बलिदान और पाप के बलिदानों में विभाजित थे। सुगंध के बलिदानों को हवन कहा जाता था। 1:13। सुखदायक सुगंध के 3 बलिदान होते थे। इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, परंतु उनमें होम बलि थी जो संपूर्ण समर्पण के लिए होती थी। अन्न बलि परमेश्वर की सेवा के लिए बलिदान था। मेल बलि का उद्देश्य था परमेश्वर के साथ संगति हो। ये सुखदायक सुगंध के बलिदान थे। पापों के भी 2 बलिदान थे, पहला पाप बलि, दूसरा अपराध बलि। आगे चलकर हम इन दोनों पाप बलियों में अंतर देखेंगे। लेव व्यवस्था के अध्याय 1:3 में मुख्य बात यह है कि कोई भी बलि या भेंट जो आप परमेश्वर को चढ़ाते थे वो स्वयं की इच्छा से होना चाहिए थी। मनुष्य ने जब परमेश्वर की संगति को त्याग दिया तब वो उसकी स्वयं की इच्छा से था। इसलिए आवश्यक है कि परमेश्वर के पास सहभागिता के लिए लौटने की इच्छा भी उसकी स्वयं की स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए। अतः परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपनी इच्छा से उसके निकट आए। परमेश्वर किसी को मजबूर नहीं करता कि वो उससे प्रेम करे। परमेश्वर अपनी उसकी सेवा के लिए भी किसी पर जोर नहीं डालता है। दान देने के लिए भी परमेश्वर बल का प्रयोग नहीं करता। ये सब आपकी अपनी इच्छा से होना चाहिए। जब पशु का बलिदान किया जाता था तब बलि करने से पहले उस पर हाथ रखने होते थे, जिसका अर्थ था कि आप अपने स्थान पर पशु को बलि चढ़ा रहे हैं, अर्थात वो पशु आपके स्थान पर मारा जाता था। पाप या दोष बलि के समय पशु के सिर पर हाथ रखना होता था ताकि आपके पाप और दोष उस पशु पर चले जाए और वो आपके पापों के बदले बलि किया जाए। होम बलि में भी पशु पर हाथ रखने का अर्थ था कि परमेश्वर के सन्मुख आपके स्थान पर पशु बलि किया गया है। प्रतीकात्मक रूप में आप परमेश्वर के लिए बलिदान किए गए हैं, जिसका अर्थ था परमेश्वर के लिए संपूर्ण समर्पण, और वो उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। लेव्यवस्था 1:4। ये महत्वपूर्ण है कि हम पुराने नियम के प्रायश्चित और नए नियम के प्रायश्चित शब्द में भेद जाने। पुराने नियम का शब्द प्रायश्चित इब्रानी शब्द कफार से आता है, जिसका अर्थ है ढांपना। बैल और बकरों के लहू द्वारा पापों का धोया जाना असंभव है। वे कभी किसी के पाप नहीं मिटाते थे, परंतु पाप को ढांप देते थे। मनुष्य के दोष छिप जाते थे, मिटते नहीं थे। इसलिए पुराने नियम का प्रायश्चित शब्द जो इब्रानी भाषा के कफार शब्द से आया है, आपका अर्थ वास्तव में ढापना है। नए नियम में यीशु मसीह के बलिदान द्वारा हमारे पाप सदा के लिए मिटा दिए गए हैं। अतः परमेश्वर की नई वाचा जो उसने यीशु मसीह के द्वारा बांधी अधिक उत्तम है। जब आप पुराने नियम की वाचा और विभिन्न बलिदानों की तुलना करते हैं, तब हमें यीशु मसीह के बलिदान के लिए कितना आभारी होना चाहिए, जिसके कारण परमेश्वर से पुराने रूप का संबंध आगे को न रहा, परंतु यीशु मसीह में नई वाचा के द्वारा रद्द हो गया। बलिदानों और वाचा का उद्देश्य था कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का आधार स्थापित किया जाए। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था, तब उसके मन में एक ही विचार था कि वो उसके साथ संगति करे, संगति अर्थात एक हो जाना। मैं परमेश्वर के साथ एक मन हो जाऊं, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। बाइबल कहती है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक साथ चल सकेंगे? आमोस 3:3। क्या मैं वास्तव में परमेश्वर के साथ चल सकता हूं यदि हम परस्पर सहमत ना हो? मैं परमेश्वर के साथ वास्तविक संगति नहीं कर सकता यदि मैं परमेश्वर के साथ परस्पर सहमति में नहीं हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी संगति के लिए बनाया, परंतु मनुष्य ने वो संगति आदन की वाटिका में तोड़ दी। उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध फल खा लिया था। पाप के प्रवेश के कारण परमेश्वर से संगति टूट गई और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर ने चाहा कि उसकी संगति को पुनर्स्थापित करे, परंतु परमेश्वर के विधान को तोड़ा गया था। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2:17। अतः यहां आज्ञा तोड़ी गई और उसका दंड चला आ रहा है। मनुष्य को पुनः अपनी संगति में लाने के लिए परमेश्वर को एक विधान बनाना था। अतः परमेश्वर ने पुराने नियम में बलिदानों का प्रावधान किया, जिसमें मनुष्य के स्थान पर पशु को मृत्यु दंड दिया जाता था। जैसे हम पहले कह चुके हैं, पशु के सिर पर हाथ रखने का अर्थ था कि आप अपने आप को उस पशु के स्थान पर रख रहे हैं, और जब वो पशु वध किया जाता था तब उसकी मृत्यु आपके मृत्यु दंड का प्रतीक थी। वो पशु आपका प्रतिकल्प होता था और उसकी मृत्यु के द्वारा आपके पाप छिपाए जाते थे। इस प्रकार आप दूसरी बार पाप करने तक परमेश्वर की संगति कर सकते थे। फिर से पाप करने पर आपको और एक पशु बलिदान करना होता था। अतः परमेश्वर के साथ सहभागिता बनाए रखने के लिए आपको धनवान होना और बहुत से पशु रखना आवश्यक था, अन्यथा आपका जीवन संकट में था। वो वाचा मनुष्य को परमेश्वर के साथ पूर्ण एवं सिद्ध संगति प्रदान करने में सफल नहीं हो पाई थी। वो तो केवल उस दिन की ओर संकेत करती थी जिस दिन परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेजे कि वो हमारे पापों के लिए मेमना बनकर बलि हो जाए। पत्रस ने कहा, तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। 1 पत्रस 1:18-19 पद। अतः जब हम इन बलिदानों के विषय में पढ़ते हैं, तब हमें ये समझ जाना चाहिए कि वे सब मसीह यीशु की ओर संकेत कर रहे हैं। वे कह रहे थे, हम वो नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, एक आने वाला है जो ये काम करेगा। इस प्रकार वे सब मनुष्य का ध्यान उस सिद्ध भली की ओर ले जा रहे थे जो परमेश्वर मसीह यीशु के क्रूसीकरण द्वारा चढ़ाने वाला था। यीशु परमेश्वर के सामने उपस्थित है कि हमारा विलाप करे। नए नियम में प्रायश्चित का अर्थ एक हो जाना या कोइनोनिया संगति है। अब मैं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ एक हो गया हूं। उसके लहू से प्रायश्चित या मेरे पापों का प्रायश्चित संभव हुआ ताकि मैं परमेश्वर के साथ सुंदर संगति कर सकूं। बलिदानों के बारे में पढ़ते समय पहले अध्याय में होम बलि का उल्लेख है। होम बलि समर्पण की बलि थी। यदि मैं पूर्ण रूप से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूं तो मुझे याजक के पास एक बैल लाकर उसके सिर पर हाथ रखना होते थे। याजक बैल का वध करके उसके लहू को वेदी के सिंगों पर उंडेलता था, तब उस बैल को वेदी पर पूरी तरह जला दिया जाता था। मांस के जलने का धुआं ऊपर उठता था और वो परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध होता था। इस बलिदान का अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार बैल पूरी तरह जलाया गया, उसी प्रकार मैं भी परमेश्वर के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। मैंने अपने जीवन का कोई भी क्षेत्र बनाकर नहीं रखा है। आजकल की समस्या ये है कि हम अपने जीवनों को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते। हम अपने जीवन का कोई न कोई क्षेत्र परमेश्वर के समर्पण से बचाकर रख लेते हैं। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, रोमियो 12:1। परमेश्वर चाहता है कि आप पूर्ण रूप से समर्पण करें, कुछ बचाकर ना रखें। इस बलिदान में आप बैल या मेढ़ा या यदि आप गरीब हो तो कबूतर को बलि चढ़ा सकते थे।